शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति, दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती,
शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में
शक्ति, शिव ज्योति में सारी शक्ति, दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती, शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति। आत्माओं को आसरा दिलाया,
शिव ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति, दिव्य गुणों से बने हम मोती, दिव्य गुणों से बने हम मोती, शिव ज्योति में है सारी शक्ति, ज्योति में है सारी शक्ति, शिव ज्योति में है सारी शक्ति।
ओम शांति। आज के इस सत्र में सबको स्वागत है। आज हमारे सामने आदरणीय गीता बहन जी उपस्थित हैं। बहन जी का परिचय तो आप सभी ने सुना। आज का टॉपिक है राजयोग के द्वारा अष्ट शक्तियों की प्राप्ति। इस विषय पर बहन जी प्रकाश डालेंगे।
ओम शांति। मानव जीवन में दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। एक है जीवन की सही समझ ज्ञान। इंसान को इंसान के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और इंसान को वस्तुओं के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उसकी उचित समझ ज्ञान जरूरी है। तो पिता परमात्मा करके जो मूल सत्यों का ज्ञान देते हैं, ईश्वरीय ज्ञान, मूल आध्यात्मिक सत्यों का ज्ञान, जिससे हमें हर बात की समझ मिलती है। जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्यों हम मुंझते हैं, क्यों हम भ्रमित हो जाते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं, संग दोष में आ जाते हैं, क्योंकि खुद को ज्ञान स्पष्ट नहीं है, सत्य समझ नहीं है कि हमें क्या करना है, किसमें सार है क्या असार है। तो जैसे जैसे ईश्वर ये ज्ञान आप समझते जाएंगे, वो सद्बुद्धि विवेक हमारा स्पष्ट बनता जाता है। और दूसरी आवश्यकता है आत्मशक्ति, सही समझ आने के बाद भी आत्मा में शक्ति चाहिए, ताकि जो करना चाहिए वो ही हम करें, जो नहीं करना चाहिए वो नहीं ही करें। वो सेल्फ कंट्रोलिंग पावर जरूरी है। हमारे जीवन की स्थिति आज वो है कि जो नहीं करना चाहिए वो हम बार बार करते रहते हैं, और जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते। परिस्थितियों के प्रभाव में आकर हम कर लेते हैं। आत्मा में वो शक्ति नहीं है कि इस दुनिया में रहते हुए नेगेटिव प्रभाव से हम अपने को मुक्त रख सके। इसलिए हम जानते हैं, समझते हैं, चाहते भी हैं, लेकिन प्रैक्टिकल उस अनुसार कर नहीं पाते। हर एक समझता है, चाहता है कि शांति से जीना है, सबको सुख देना है, सबके साथ प्यार से चलना है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल हम सदा कर पाते हैं? नहीं कर पाते। इसलिए फिर सॉरी करते रहते हैं, पश्चाताप करते रहते हैं कि मेरे से हो गया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मैंने बोल दिया, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, अब क्या करूं, हो गया। जो नहीं सोचना चाहिए वो बार बार विचार आते रहते हैं, जिस पर चिंतन चलना चाहिए वो चलता नहीं। तो राजयोग, जो जीवन को श्रेष्ठ विधि से जीने की कला है, राजयोग का ज्ञान जीवन के हर कंसेप्ट को क्लियर कर देता है। और जब बेसिक मूल सत्य स्पष्ट है, तो व्यवहारिक जीवन में, दैनिक जीवन में आने वाली छोटी मोटी हर बात को कैसे पार करें, वो ऑटोमेटिक समझ आ जाती है। और राजयोग का अभ्यास आत्मा को शक्तिशाली बनाता है, स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट होता है। राजयोग से कोई अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि चमत्कार जादू मंत्र नहीं होता है कि बीमार ठीक हो जाए, नुकसान नफे में बदल जाए, नपास पास हो जाए, मुर्दा जिंदा हो जाए। राजयोग से ये सिद्धियां नहीं होती। राजयोग आत्मा को श्रेष्ठ शुद्ध और शक्तिशाली बनाता है, जिससे हम हर परिस्थिति को पार कर सकते हैं। अपने मन वचन कर्म को हम श्रेष्ठ बना सकते हैं। हम अपने कर्म से अपने जीवन को पार कर सकते हैं। फिर हमें इधर उधर मांगने की, दया करो, कृपा करो, रहम करो, आशीर्वाद करो, ये आवश्यकता ही नहीं रहती। ऑटोमेटिक हमें सबकी दुआएं, आशीर्वाद, कृपा, परमात्मा की मदद प्राप्त होती है। तो आत्मिक शक्तियों का विकास होता है। यहां एक एक आत्मा खुद शक्तिशाली बनती है। ऐसा नहीं है कोई एक गुरु का जीवन महान बन जाए बाकी सारे वही के वही, नहीं। यहां हरेक आत्मा महान श्रेष्ठ शक्तिशाली बनती है। तो राजयोग के अभ्यास से कैसे आत्मिक शक्तियों का विकास होता है, हमें ये सीखने की आवश्यकता है। प्रवृत्ति में रहने वाले हमें और कोई रिद्धि सिद्धि सीखने की जरूरत नहीं, हमें तो अपनी आत्म शक्तियों को जगाने की जरूरत है। और आत्मा जब शक्तिशाली बन जाती है तो ऑटोमेटिक जीवन में दिव्य गुणों की धारणा, सद्गुणों की धारणा, वैल्यूज ऑटोमेटिक जीवन में स्थायी रूप से धारण होते, प्रभावी रूप से धारण होते। जैसे हाथ ही कमजोर हो तो मैं कोई भी चीज उठा नहीं सकूंगी, गिर जाएगी, क्योंकि हाथ में शक्ति नहीं। आत्मा में शक्ति नहीं है, इसलिए जब बात आती है, परिस्थिति आती है, वैल्यूज छूट जाते हैं। हम कहते हैं नॉर्मली मैं शांति से ही चलती हूं, प्यार से ही बात करते, लेकिन उसने ऐसा किया ना, इसलिए गुस्सा आ गया। सब ऐसा करते हैं ना, इसलिए हम भी ऐसा करते। माना समय, परिस्थितियां, वातावरण, संघ के प्रभाव में वैल्यूज छूट जाते। ये ऐसी बात हुई जैसे कि मेरे पास नॉर्मली दवाई रहती है, पर जब बीमारी आती है तब गुम हो जाती, तो इसका कोई अर्थ नहीं। हमारे जीवन में मूल्यों की धारणा स्थायी रूप से, इफेक्टिव रूप से हो, उसके लिए आत्मा का शक्तिशाली बनना जरूरी है। और हरेक व्यक्ति, विशेषकर हरेक व्यक्ति अपने अपने घर, परिवार, क्षेत्र में जवाबदार है ही। हरेक लीडर है, तो एक सफल लीडर की योग्यताएं हमारे में धारण होने लगती। हम अपने छोटे भाई बहनों के आगे लीडर, अपने बच्चों के आगे हम रेस्पॉन्सिबल है, हम अपने कर्म साथियों के लिए एम्प्लॉइज के आगे हम रेस्पॉन्सिबल है। हर एक व्यक्ति जहां है वहां वो एक जवाबदार है। हमारा जीवन ऐसा आदर्श हो कि हम दूसरों के लिए मार्ग प्रशस्त कर सके और उनको मंजिल पर पहुंचा सके। हमारा जीवन ऐसा ना हो हमें देखकर कोई भटक जाए या गलत करने लगे। तो राजयोग से जिन आत्मिक शक्तियों का विकास होता है हम उनके बारे में समझेंगे। सर्वप्रथम राजयोग से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शक्ति प्राप्त होती है वो है परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेशन। जीवन में क्षण क्षण कदम कदम हमें परखना पड़ता है बातों को, व्यक्तियों को, परिस्थितियों को कि ये राइट है या रॉन्ग है, प्राप्ति है या नुकसान है, झूठ है या सत्य है, वास्तविक है या फॉल्स है, भ्रमणा है। हमें कदम कदम पर व्यक्ति को, परिस्थितियों को, बातों को परखना पड़ता है। सही न परखने के कारण हम धोखा खाते हैं। हमारा समय, शक्ति, धन बर्बाद होता है। राजयोग से हमारे में परखने की शक्ति आती है क्योंकि हमारा योग अब डायरेक्ट परम शक्ति परमात्मा से है जो परम सर्वोच्च है, अपरिवर्तनशील, एक रस है, सदा पावन, सदा कल्याणकारी, ज्ञान के सागर के साथ है। इसलिए उनकी याद से हमारी मनोस्थिति भी एक रस श्रेष्ठ बनने लगती है। अब तक मन और बुद्धि हमने उन बातों से, व्यक्तियों से लगा के रखा है जो परिवर्तनशील है। इसलिए बहुत छोटी छोटी बातों में हम अपसेट हो जाते हैं, हमारी मनोस्थिति गड़बड़ा जाती है, हम स्थिर एक रस नहीं रह पाते हैं। लेकिन अब हम बुद्धि योग उस परम शक्ति परमात्मा से लगाते हैं जो सदा परम है, सदा पावन है, सदा कल्याणकारी है। तो मन और बुद्धि की स्थिति एक रस, स्थिर, स्वच्छ होती जाती है जिसके कारण कोई भी परिस्थिति का शेडो, कोई भी व्यक्ति के वाइब्रेशंस को हम परख पाते हैं। जैसे कोई जलाशय का पानी स्थिर है, स्वच्छ है, तो कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब क्लियर कैच होता है। अगर पानी गंदा है, हिल रहा है, तो प्रतिबिंब क्लियर कैच नहीं होगा। राजयोग से मन की स्थिति जब श्रेष्ठ, एक रस बनती है तो परिस्थिति के संकेत और व्यक्ति के वाइब्रेशंस को हम क्लियर कैच कर सकते हैं, जिसके कारण हम परख पाते हैं कि ये व्यक्ति किस भाव से आया है, इनकी वृत्ति क्या है, परिस्थिति के क्या सिग्नल्स आ रहे हैं वो हम कैच कर सकेंगे। जैसे एक जवाहरी के पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, वो परख सकता है हीरा सत्य असली है या नकली, क्योंकि कॉमन व्यक्ति परख नहीं सकता है, झूठे हीरे भी चमकते हैं, लेकिन एक जौहरी के पास वो ज्ञान और अनुभव के आधार से वो परख है, वो परख लेता है कि ये आर्टिफिशियल है या रियल है। तो जैसे जैसे ईश्वरीय ज्ञान का डेप्थ हमारी बुद्धि में स्पष्ट होता जाता है और योग अभ्यास से मनोस्थिति शुद्ध एकरस बनती जाती है, हमारे में परख शक्ति आती जाती है। व्यवहारिक जीवन में, हर मानव जीवन में इसकी आवश्यकता है ही, पर जो व्यक्ति लीडर है, मैनेजर है, रेस्पॉन्सिबल है, उनको अपने कार्य क्षेत्र में भी बहुत ये यूजफुल होता है। इससे वो परख सकता है, सिलेक्ट कर सकता है क्या राइट क्या रॉन्ग है। 10 ऑप्शन है पर आप परख सकेंगे 10 में राइट क्या है रॉन्ग क्या है। दूसरी शक्ति जो प्राप्त है वो है निर्णय शक्ति, पावर टू जज। 10 ऑप्शन है कौन सा सिलेक्ट करना है। कई बार हम समझते हैं ये राइट है ये रॉन्ग है, पर निर्णय नहीं कर पाते हैं क्या करना चाहिए, हम कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मूंझते हैं, समस्या का निवारण नहीं कर पाते हैं, उसका एक आवरण टेंशन जीवन पर आ जाता है। राजयोग में प्रथम लेसन में ही आपने समझा है कि मन से हम सोचते हैं, बुद्धि से निर्णय करते हैं, पर आज क्यों जीवन में बार बार मुंझते रहते हैं? क्योंकि बुद्धि शुद्ध नहीं है, शक्तिशाली नहीं है, इसलिए यथार्थ निर्णय शीघ्र निर्णय नहीं कर पाते हैं। राजयोग में हम बुद्धि योग सदा पावन ऑलमाइटी परमात्मा से लगाते हैं, जिससे बुद्धि शुद्ध और शक्तिशाली बनती, जिसके कारण मन में कितने भी विकल्प, हमारे सामने कितने भी ऑप्शंस हो, हम राइट निर्णय कर सकते हैं। चित्र में तराजू दिखाया है, ये चीज इतने वजन की हुई, ये निर्णय हम तब करते हैं जब तराजू का कांटा स्थिर होता है। जब तक वो कांटा हिलता है हम कहते भाई रुको अभी बरोबर नहीं वजन हुआ। इस प्रकार जब हमारा सद विवेक स्थिर स्थिर शक्तिशाली बन जाता है तो हम शीघ्र निर्णय कर पाते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। जब तक विवेक सद्विवेक दिव्य बुद्धि सद्बुद्धि शक्तिशाली नहीं है, आप देखते हैं कि संगदोष में परिस्थिति के प्रभाव में हमारा विवेक बदल जाता है, विवेक हम दबा देते हैं और गलत कर लेते हैं। तो राजयोग से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दो मूल शक्तियां हैं जिसकी हमें प्राप्ति होती है। अनुभव ये कहता है कि आपके जीवन में ये शक्ति आने से जो काम 6 घंटे में भी आप नहीं कर पाते वो आप 4 घंटे में कर सकेंगे, क्योंकि क्लैरिटी है, जीवन के जगत के हर कंसेप्ट क्लियर है। इसलिए हमें बार बार दूसरों से पूछने की आवश्यकता नहीं रहे। कहते ना, जब खुद की मूढ़मति होती है तो हमें वजीर रखने पड़ते हैं, दूसरों से पूछना पड़ता है, पर जब खुद का विवेक स्पष्ट है तो कोई उलझन नहीं, यथार्थ और शीघ्र निर्णय हम ले सकते हैं। तीसरा है राजयोग से जो हमें शक्ति प्राप्त होती है वो पावर टू एकोमोडेट, पावर टू एडजस्ट। जीवन में हमें भांत भांत की व्यक्तियों के साथ कार्य करना होता है। इस वर्ल्ड ड्रामा में ये विशेषता है कि यहां हर आत्मा का स्वभाव संस्कार अपना अपना अलग अलग है, हर एक यूनिक है, एक न मिले दूसरे से। हर एक की अकल भी अलग है, शकल भी अलग है, हमें वैरायटी लोगों के साथ और डिफरेंट सिचुएशन में काम करना होता है। अगर हमारे में सबको समाने की, सबको दिल में एकोमोडेट करने की, सबसे एडजस्ट करने की शक्ति नहीं होगी तो हम चल नहीं सकेंगे। जब तक हम अपने गोल को सिद्ध करें, हमें अपने पुरुषार्थ की यात्रा में एकोमोडेट करना पड़ता है। अगर हम रिजिड हैं, अकड़ू हैं, तो हम जल्दी ब्रेक हो जाएंगे, चल नहीं सकेंगे। चित्र में बताया है कि हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। जैसी परिस्थिति, जैसी व्यक्ति, उस अनुसार कैसे हम एडजस्ट होके चले और अपने लक्ष्य को पाए। आपने देखा होगा जब हवा के तूफान आते हैं तो बड़े बड़े मजबूत पेड़ धराशायी हो जाते, पर छोटे पौधे जो कोमल है वो बेंड हो जाते हैं, इसलिए हवा का तूफान आगे निकल जाता है और वो फिर से सर्वाइव हो जाते हैं। हम्बलनेस, नम्रता, निर्माणता हमारे में तब आएगी जब एडजस्ट करने का पावर हो। चित्र में बताया है कि सागर में चारों तरफ से नदियां आकर समा जाती हैं, चाहे वो नदी उत्तर से आ रही है, दक्षिण से आ रही है, बड़ी नदी है छोटी है, स्वच्छ पानी है गंदा पानी है, सागर सबको समा सकता है। कारण क्यों समा सकता है, क्या उनकी दो विशेषताएं? एक टुबके में एक कंकर भी फेंकते हैं तो छींटे उड़ते, और सागर इतनी नदियों को अपने में समा लेता है क्योंकि उसमें विशालता है और गहराई है, डेप्थ है। हमारे अंदर विशालता नहीं, नैरो माइंडेडनेस है, संकुचितता है। जब हम बॉडी कॉन्शियस बन जाते हैं तो हमारे में नैरो माइंडेडनेस आ जाता है, संकुचितता हमारे में आ जाती है, दीवारें बन जाती हैं। ये इस जाति का है, ये इस धर्म का है, ये पुरुष है, ये स्त्री है, ये बच्चा है, ये बूढ़ा है, ये इस प्रांत का है। बॉडी कॉन्शियस बनने से ये लिमिट्स हमारी पर्सनालिटी में क्रिएट हो जाते, जिसके कारण हम सबको दिल से स्वीकार नहीं कर पाते हैं, एक्सेप्टेंस नहीं। इसलिए हम सबके साथ चल नहीं पाते। जैसे जैसे हम योग अभ्यास करते हैं, राजयोग की पहली प्रैक्टिस, मैं आत्मा हूं, प्रत्येक व्यक्ति एक आत्मा है और हम सभी आत्माएं एक भगवान के बच्चे हैं, आपस में भाई भाई हैं। हमारे अंदर अनलिमिटेडनेस आता है, बेहद की भावनाएं आती, ये हद के दैहिक जाति ज्ञाति प्रांत भाषा सीमा भेद की जो संकुचितताएं हैं वो खत्म हो जाती है। इसलिए विश्व एक परिवार लगेगा, जो आत्माएं जैसी हैं हम उनको प्यार से स्वीकार कर सकेंगे, हम उनको अपने दिल में स्थान दे सकेंगे, हमारी पर्सनालिटी स्मूथ बनती जाती। जो हमारे व्यक्तित्व में टेढ़ा बांकापन है वो सोल कॉन्शियस बनने से खत्म हो जाता है, एंगुलरिटीज खत्म हो जाती है, हम सोल कॉन्शियस बनते हैं, इसलिए सबके साथ एडजस्ट कर पाते हैं। आज ये शक्ति न होने के कारण ही परिवार टूट रहे हैं, संबंध टूट रहे, क्योंकि हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं जो है जैसे। हर एक सोचता है मुझे जो पति मिला है, मुझे जो बीबी मिली है, मुझे जो बच्चे मिले वो अच्छे नहीं, उनका पति अच्छा है, उनके बच्चे अच्छे, उनसे पूछो तो वो कहेंगे मुझे पता है वो कैसे। लेकिन विशालता नहीं, इसलिए स्वीकार नहीं कर पाते। जब सोल कॉन्शियस बनते हैं हमें खुद की रियलाइजेशन इतनी क्लियर रहती है कि मैं खुद क्या हूं। जब दूसरों के लिए सोचते हैं ये ऐसा है, ये टेढ़ा है, मैं इनके साथ नहीं रह सकता, काम नहीं कर सकता, लेकिन मैं खुद कैसी हूं, मेरे में भी तो कोई वीकनेसेस है, मेरे में भी तो कुछ कमजोरियां हैं, कोई भी तो हमारे में से परफेक्ट नहीं है। तो हमें एक दो को प्यार से स्वीकार करना होगा, लेकिन वो तब हो सकेगा जब ये शक्ति हमारे में आएगी। राजयोग से, ज्ञान की गहराई आने से हमारे में मैच्योरिटी आती है, गंभीरता आती, डेप्थ आता है। हम छोटी छोटी बात में एक दो को नकार नहीं देंगे। क्यों आजकल जल्दी रिलेशन ब्रेक होते हैं? पहले भी लोग आपस में जीते थे। हम अपने माँ बाप बाप दादा को देखें, जीवन भर एक दूसरे कितना निभाते थे, एडजस्ट करते थे। ऐसे थोड़ी उन लोगों में कोई टेढ़ा बांकापन नहीं था, पर नहीं, वो शक्ति और समझ थी, गंभीरता थी। हमारे में आज वो मैच्योरिटी रही, क्योंकि ज्ञान समझ की गहराई रही। और सोल कॉन्शियसनेस जब आता है तो अनलिमिटेडनेस, बेहद की भावना आएगी। इसलिए ये भी आज आप देखिए, जिसको अपना समझेंगे उनकी बात आप समा लेते हैं, दूसरों की बात होंगी आप 50 जगह फैलाएंगे, 10 को बताएंगे, अपने किसी की बात है तो समा लेंगे। कोई फिर से वो बात रिपीट करेगा तो आप कहेंगे कि आप क्यों बात उखाड़ते, हो गया ना, बात पूरी हो गई ना, संभालो। क्यों? क्योंकि हमने उसको अपना समझा। जब सभी आत्माओं से अपनापन होगा तो आप उनकी बात संभालेंगे। इतनी आप में जगत माता जगत पिता की भावना आएगी। जैसे मां बच्चे के हर हरकत को स्वीकार करती है, क्योंकि प्यार है, विशालता है। इस प्रकार जब हम सोल कॉन्शियस बनते हैं, गॉड कॉन्शियस बनते हैं, तो हम एक जगत माता समान, जगत पिता समान हमारी स्थिति बनेगी। हम हर आत्माओं को प्यार से चला सकते हैं। 4th शक्ति है सहन शक्ति, पावर टू टॉलरेट। आज सहन शक्ति नहीं है, आत्माएं अंदर से कमजोर बनती जा रही, इसलिए छोटी बातें भी सहन नहीं कर पाते। और वो सहन शक्ति ना होने के कारण हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं, सामने जवाब देते हैं, ऐसा प्रतिभाव देते हैं, क्योंकि आत्मा अंदर से शक्तिशाली नहीं। सहन करना माना इनर स्ट्रेंथ, मैं अंदर से इतनी शक्तिशाली बन जाऊं कि कोई कैसा भी व्यवहार करे मैं रिएक्ट नहीं करूं, बल्कि अप टू एंड अच्छे से अच्छा रिटर्न करूं। वो है टॉलरेंस। टॉलरेंस माना ये नहीं है, कई बार हम सोचते हैं मैं ही सहन करूं, मैं ही मरती रहूं, मैं ही झुकती रहूं। हम समझते हैं सहन करना माना दबना, मरना, लेकिन नहीं। सहन करना माना अंदर से शक्तिशाली बन जाना। जैसे फिजिकली आप शक्तिशाली है तो कोई कितना भी जोर का धक्का लगाएगा तो भी आप नहीं गिरेंगे, पर कमजोर है तो थोड़ा भी धक्का लगेगा गिर जाएगी। ऐसे आध्यात्मिक रूप से और नैतिक रूप से जब हम शक्तिशाली बनते हैं तो कोई कैसा भी व्यवहार करेगा हम टॉलरेट कर सकेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। जीवन में हमें अनुभव है कितना भी अच्छा कार्य करें जरूरी नहीं है हमें अच्छा ही फीडबैक मिले। कोई हमारी निंदा ग्लानी करेगा, कोई हमारी प्रशंसा करेगा, जय भी होगा पराजय भी होगा, मान भी मिलेगा अपमान भी होगा, सुख भी आएगा दुख भी आएगा। अगर मैं आध्यात्मिक हूं, नैतिक रूप से शक्तिशाली हूं, तो मैं घबरा नहीं जाऊंगी, अपसेट नहीं हो जाऊंगी, मैं टॉलरेट कर सकूंगी। आज वो टॉलरेंस पावर नहीं है, इसलिए रिएक्ट करते हम हैं इस वर्ल्ड ड्रामा में एक्टर्स। हमें एक्ट करना है, हमें अपना रोल प्ले करना है, पर मोस्टली हम एक्ट नहीं करते हैं, हम रिएक्ट ही करते रहते। इसने ऐसा किया इसलिए मैं भी ऐसा करूंगी, उसने दो बोला मैं चार बोलूंगी, हम रिएक्ट करते। और इसलिए आप देखिए, आपके मां बाप में जितनी सहन शक्ति थी उतनी आप में नहीं, और जितनी आप में है आपके बच्चों में नहीं। आंतरिक शक्ति में कमी आ रही, चीजें अच्छी हो रही है, सिस्टम्स क्वालिटी हो रहे हैं, और इंसान भीतर से कमजोर हो रहा है। घर साधन से भर रहा है, व्यक्ति भीतर से खाली हो रहा है। आवश्यकता है आंतरिक शक्तियों के विकास की, गुणों के विकास। इसलिए राजयोग हमें आध्यात्मिक रूप से शक्तिशाली बनाता है। चित्र में बताया है प्रकृति में भी गुण है, हम उससे पत्थर मारते हैं फिर भी वो हमें फल देता है, हम वृक्ष को काटते हैं जबकि वो हमें छांव देता है। कोई कैसा भी व्यवहार करे, हम अच्छे से अच्छा रिटर्न करें, वो है टॉलरेंस। इसलिए इतिहास बताता है संसार में जो भी महान हुआ है उनमें सहन शक्ति बहुत होती है, चाहे वो भक्त हैं, महात्माएं हैं, धर्मात्माएं हैं, समाज सुधारक है, कोई भी, समाज ने कैसा भी व्यवहार किया उन्होंने अच्छा रिटर्न किया, क्योंकि वो स्पिरिचुअली पावरफुल थे। यह आवश्यक है सहन शक्ति। जितना प्यार होगा टॉलरेंस पावर बढ़ेगा। मैंने बताया ना कि बच्चे की हर हरकत मां को अच्छी लगती क्योंकि प्यार है। एक छोटी बच्ची अपने और छोटे भाई को उठा के पहाड़ी चढ़ रही थी, किसी ने कहा इतना बोझ उठा के क्यों चल रही हो, तुम खुद छोटी। बोला बोझ थोड़ी है, मेरा भाई है। जहां अपनापन है प्यार है, ईश्वर से प्यार है, तो आप देखिए योगियों ने, भक्तों ने समाज से क्या नहीं सहन किया, मीरा ने क्या नहीं सहन किया। पर प्यार है तो सहन करना लगता ही नहीं। तो जैसे जैसे हम सोल कॉन्शियस बनते जाते हैं, गॉड कॉन्शियस बनते जाते हैं, हमारे अंदर आत्माओं के लिए, शक्तियों के लिए प्यार आता है। कैसी भी बात आएंगी आप हंसते मुंह पार कर सकेंगे, इतने शक्तिशाली आप बन जाएं। पावर टू पैक अप, पांचवी शक्ति राजयोग से समेटने की शक्ति। चित्र में बैग और बिस्तर दिखाया है। हम यात्रा पर जाते हैं, जरूरी सामान लेकर जाते हैं, पूरा घर लेके नहीं जाते, और वो सामान उस रीति से बिखेरते हैं ताकि समय पर समेट कर आगे यात्रा पर जा सके। आज आप सबको जाना है तो आप में कौन सी शक्ति आ गई? समेटने की शक्ति, सामान को समेट लिया था। जीवन यात्रा है, हमने अपने मन और बुद्धि के बिस्तरे को इतना फैला दिया है जैसे कि हमें यहां से जाना ही न हो। और वो नहीं इच्छाएं, भावनाएं, विचार, अपेक्षाएं इतने फैलाए हैं, इंसान इच्छाओं के कारण ही परेशान है। और जब हम उनको समेट नहीं सकते हैं इसलिए परेशान, मन अशांत, मानसिक बीमारियों का कारण यही है कि हम समेट नहीं पाते हैं। राजयोग से समेटने की शक्ति आती है, क्योंकि जो वेस्ट थॉट्स है, जो वेस्ट डिजायर्स है, वेस्ट इंटरेस्ट है, उसको हम समेट लेते हैं। क्योंकि ज्ञान से समझ आती है कि वेस्ट क्या है, नेसेसरी क्या है। बहुत सूक्ष्म रेखा है दो के बीच में, होगी इच्छा और कहेंगे आवश्यक है, ये भी जरूरी है ना, होना चाहिए ना, है इच्छा, है ना, नेसेसरी जो आवश्यक है वो तो करना ही है, रखना ही है, लाना ही है, जरूरी। पर कई बार हमारे नेसेसरी थॉट्स भी नेगेटिविटी से कलर्ड होते हैं, क्योंकि इच्छा कामना मिक्स हो जाती। इसलिए राजयोग का ज्ञान हमें स्पष्ट करता है जरूरी क्या है, इच्छा क्या है, आवश्यक क्या है, वेस्ट अनावश्यक क्या है। तो आप अपने लक्ष्य के प्रति फोकस हो सकेंगे। आज क्यों हम जहां हैं, जिस कार्य में हैं, वहां फोकस नहीं हो पाते? नौकरी यहां कर रहे हैं, इच्छाएं दूसरी है, इसलिए नौकरी यहां है, धंधे दूसरे ही करते, वहीं एंगेज रहते, क्योंकि इंटरेस्ट दूसरे हैं। जब मेरी नौकरी यहां है मुझे वहां ही फोकस रहना है और इच्छाओं को मुझे समेट लेना होगा तो मैं वहां अवेलेबल हो सकेगी, अपने कर्म को न्याय दे सकूंगी। आज कंपनियों में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में, ऑर्गेनाइजेशंस में आप क्या देखते हैं? पोजीशन यहां लेते हैं और व्यक्ति अवेलेबल ही नहीं। फिजिकली अवेलेबल है तो मेंटली अवेलेबल नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट दूसरा है, ये तो जस्ट नौकरी ले ली। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली हम तब अवेलेबल होंगे अपने कार्य में जब हमारे में ये समेटने की शक्ति आएगी। इससे हमारे में ये योग्यता आएगी, अवेलेबिलिटी। आज मैं यहां हूं, मैंने सफेद वस्त्र पहने हैं, सेवा मार्ग अपनाया, पर अगर मेरी इच्छाएं दूसरी होंगी तो मैं यहां न्याय नहीं दे सकूंगी, मैं सफल नहीं हो सकूंगी। मैं इस कार्य में, क्षेत्र में फोकस, कॉन्सेंट्रेट नहीं हो सकूंगी, एवर रेडी नहीं बन सकूंगी, क्योंकि इच्छाएं दूसरी हैं। राजयोग में हम क्या करते हैं? रोज खुद को प्रैक्टिस कराते हैं, कुछ क्षणों के लिए सब बातों को एक तरफ रख, व्यर्थ शारीरिक, सामाजिक, सांसारिक विचारों से को समेट कर हम स्वचिंतन, परमात्मा चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन में स्थित होते। ये रोज समेटने की प्रैक्टिस हमारे में कॉन्सेंट्रेशन, माइंड को फोकस करने की योग्यता देता है। वेस्ट थॉट्स, इंटरेस्ट, डिजायर्स खत्म करके जो करना है, जो लक्ष्य है जीवन के लिए, जो क्षेत्र मैंने चुना, मैं वहां एकाग्र हो सकूं। अक्सर आप देखो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे होंगे, यात्रा का आनंद नहीं लेंगे, घर की बातें याद करेंगे कि ये काम तो भूल ही गए, फ्रिज में फलानी वस्तु तो रह ही गई, इसको बताना रह गया। तो यात्रा में होंगे घर की बात याद करेंगे, घर आएंगे तो यात्रा को याद करेंगे, यहां आए घर को याद करेंगे, घर जाएंगे यहां को याद करें। हम जहां हैं वहां क्यों प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं है? क्योंकि स्व में स्थित नहीं। जो मेरी वास्तविकता है, जो मेरी रियलिटी है कि मैं आत्मा हूं, ईश्वर की संतान हूं, मैं परम धाम के निवासी हूं, मैं वैरायटी रोल प्ले कर रही हूं, पर मैं ये रोल नहीं हूं, मैं आत्मा। जब हम अपनी वास्तविकता में स्थित होते हैं तो मन प्रेजेंट में रहता है। छठवीं शक्ति है पावर टू विड्रॉ। जब चाहे विस्तार में जाए, जब चाहे समेट सके, सार में आ जाए, जब चाहे न्यारा बन सके, जब चाहे प्यारा बन जाए, जब चाहे इन्वॉल्व हो जाए, जब चाहे डिटैच हो जाए, ये शक्ति नहीं है। इसलिए ऑफिस में कुछ हुआ वो प्रभाव लेके घर जाते, वहां गुस्सा करेंगे, अरे भाई कुछ हुआ ही नहीं, घर में आते ही गुस्सा क्यों, डिस्टर्ब ऑफिस में हुए थे, पर वो लेके यहां दूसरे रोल में आए। घर में कुछ बात अनबन हो गई, ऑफिस में जाके मूड ऑफ, क्यों डिटैच नहीं हो पाते। एक रोल पूरा हुआ, डिटैच नहीं हुए, वही प्रभाव लेके दूसरे रोल में गए, इसलिए गड़बड़। कल लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था ना, आज भी रूठे हुए हैं, आज भी मूड ऑफ, अरे भाई कल लड़े थे ना, आज क्या है? पर दिन बदल गया, समय बदल गया, घटना पूरी हो गई, मन डिटैच नहीं हुआ, इसलिए आज भी प्रभाव रहा, तो अच्छा व्यवहार नहीं कर सकते। इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं कि व्यर्थ बातों में चले जाते हैं, कई इतने डिटैच हो जाते हैं कि रूखे हो जाते हैं। राजयोग से न्यारापन प्यारापन बैलेंस होता है। चित्र में बताया है कछुआ, कछुए में भी सेंस है, जब चाहे कर्मेंद्रियों को बाहर निकालता है, कार्य पूरा हो जाता है समेट कर शांत बैठ जाता है। हम इंसान होते हुए हमारे में सेंस नहीं, कार्य पूरा हो गया, बात हो गई, फिर भी हम बुद्धि को फुल स्टॉप नहीं दे पाते, वही बातें बार 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 सोचते रहते हैं। हो गया ना, अब क्या करना है, वो सबक सीखें, आगे बढ़े, क्यों हुआ, ऐसा हुआ, ये हुआ, बस वही सोचते रहते हैं। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है जीवन में, अटैच होने की प्रैक्टिस है, डिटैच होने की प्रैक्टिस नहीं। राजयोग में हम ये रोज प्रैक्टिस करते हैं, मैं शरीर से अलग आत्मा, हर क्षण शरीर से काम कर रहा है, लेकिन मुझे बार बार ये प्रैक्टिस करनी है, अवेयरनेस रखनी है कि मैं शरीर से अलग हूं। ये देह से डिटैच होने की प्रैक्टिस, हर बात परिस्थिति में साक्षी बनने की शक्ति आपको देगा। हम साक्षी नहीं बन पाते हैं, इसलिए व्यर्थ का माथा मारते हैं, सलाह देने लग जाते हैं और फिर अपमानित होते, दुखी होते रहते हैं। हम अपने कर्मचारियों के साथ भी कोई कुछ बात कहने आता है, अंदर डिटैच होके नहीं, डिटैच ऑब्जर्वर नहीं बन पाते हैं, इसलिए उनको सुन नहीं सकते। वो कोई बात कहे उससे पहले हम अंदर सोच लेंगे, पता है ये क्या कहने आया होगा, पहले के अनुभव से बात को कलर्ड कर देते हैं, इसलिए मालूम है आप क्या कहेंगे, सुनने की क्षमता नहीं रहती। एक अच्छे नेता, मैनेजर, रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति को चाहिए कि उसमें लिसनिंग एबिलिटी हो। क्योंकि हमें सुनने से इन्फॉर्मेशन मिलती, हमें पता चलता है हमारे घर में, साथियों में, हमारे डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है, पर डिटैच ऑब्जर्वर नहीं है तो वो कोई बात कहेगा उससे पहले मैं बात को कलर्ड कर दूंगी कि वो क्या कहने आया होगा। कुदरत ने हमें दो कान दिए हैं, एक मुख दिया है, वो क्या कहता है, क्या सिखाता है, हाँ, वो क्या सिखाता है कि सुने ज्यादा बोले कम। हम सुनते कम है, बोलते ज्यादा है। क्यों हम सुन नहीं सकते हैं, क्योंकि डिटैच होने की प्रैक्टिस में। राजयोग हमें यह सिखाता है कि जब पार्ट प्ले करते हैं तो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी और फुल्ली इन्वॉल्वमेंट से पार्ट प्ले करें, दिल से करें, पर कार्य पूरा हुआ डिटैच हो जाइए, तो मन साइलेंस में रख सकेंगे, नहीं तो वही कामकाज की बातें, वर्क कॉन्शियसनेस आ जाती। सुबह ट्रेन पकड़नी है पर पूरी रात नींद नहीं आती, क्योंकि डिटैच नहीं हो पाते। तो दो घंटे के बाद जाना है ना, पर बस अभी से आगे पीछे होते रहे, दो घंटे के बाद जाना है ना, अभी तो मन एकाग्र रखे। तो ये प्रैक्टिस जरूरी है, रोज हम शरीर से अलग खुद को आत्मा समझे। ऑटोमेटिक सब बातों में साक्षीपन आप में आएगा, और जब हम साक्षी होकर देखते हैं तो राइट परख और डिसीजन आता है। जब प्रभाव में आ गए बात के, इसलिए सही निर्णय नहीं कर पाते हैं, गलत हो जाता है। सातवीं शक्ति है पावर टू कोऑपरेट, सहयोग की शक्ति। सहयोग से कार्य सहज हो जाता है। कितना भी डिफिकल्ट काम होगा हम कर सकेंगे, एंजॉयबल बना सकेंगे। एक अकेला सब कुछ नहीं कर सकता है, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड हो, एबल हो। जीवन में, कार्य क्षेत्र में हमें सबके सहयोग के साथ चलना है। लेकिन आप सहयोग तब कर पाएंगे जब आपको सबसे प्यार होगा, स्नेह होगा, तो सहयोग बनगी बन सके। वो रूहानी प्यार नहीं है, आत्मिक प्यार नहीं है, इसलिए एक दो को कॉपरेट नहीं करते। क्यों प्यार नहीं है? क्योंकि नेगेटिव विजन है, अवगुण देखते हैं, कमजोरियां देखते हैं, इसलिए घृणा नफरत आती है। कहते हैं ना, मैं इनके साथ काम नहीं करूंगा, मुझे पता है वो कैसा है। दूसरों की कमजोरियां, अवगुण भूले चित्त पर है, इसलिए घृणा नफरत की फीलिंग है। हरेक के गुण विशेषताओं को चित पर रखेंगे तो सबके लिए लव रिस्पेक्ट होगा, कॉपरेशन आएगा। ईश्वर को कहते हैं प्रार्थना में, भजन में, मोरे अवगुण चितन धरो। भगवान को कहते हैं, भगवान आप मेरे अवगुण चित पर नहीं धरना, आप ही तरस करो, आप मेरे पर रहम करना। और हम खुद क्या करते हैं? हमारे चित पर क्या है? ये ऐसा है, ये ऐसा है, फलानी ऐसी है, ये ऐसा, इनके घर में ऐसा, उसके घर में ऐसा, हरेक का कचरा चित्त पर है, अवगुण कमजोरियां चित्त पर है, इसलिए प्यार नहीं है, सहयोग की भावना नहीं। हम कोई कार्य करते हैं तो हम क्या चाहते हैं? कि सबका सहयोग मिले, चाहते हैं कि नहीं? लेकिन सहयोग प्राप्त करने की विधि है, मुझे सबका सहयोग चाहिए तो उसकी मेथड क्या है? मैं खुद सहयोग दूं, सहयोग देंगे तो सहयोग मिलेगा, प्यार देंगे तो प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट देंगे तो रिस्पेक्ट मिलेगा, सुख देंगे तो सुख मिलेगा। जो आप देंगे वो ही आप पाएंगे, ये कर्म क्षेत्र का सिद्धांत है। इसलिए सहयोग की भावना ऑटोमेटिक मिलता है। देना ही लेना है, ये सिखाया जाता है हमें। हम देंगे अपने आप मिलेगा। चित्र में गोवर्धन पर्वत उठाते हुए बताया, शास्त्रों में दिखाया है ना भी, सबकी अंगुली के सहयोग से गोवर्धन पर्वत उठाए। ये कोई स्थूल मिट्टी पत्थर के पहाड़ को उठाने की बात नहीं है। पहाड़ उठाना माना कोई भगीरथ काम करना, कोई डिफिकल्ट टास्क करना। सर्व के सहयोग से वो सहज हो जाता है। परमात्मा विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, कलयुग को सतयुग में बदल रहे हैं। हम सर्व की अच्छाइयों का सहयोग वो हमसे चाहते हैं, हमारे पवित्र योगी जीवन का सहयोग चाहते हैं। आपस में प्यार नहीं इसलिए सहयोग नहीं, इसलिए यूनिटी नहीं, इसलिए सफलता नहीं। एक कंपनी ने हमें सर्वे करके बताया और रिजल्ट कहा कि एक भारतीय में 3 जैपनीज जितनी काम करने की क्षमता है। इतने भारतवासी एबल है, पर उन्होंने कहा 2 भारतीय मिलते हैं, 1 जैपनीज जितना ही काम कर पाते और 3 भारतीय मिलते हैं काम ही नहीं होता है, क्योंकि आपस में कॉपरेशन की भावना नहीं है, इसलिए टीम स्पिरिट नहीं आता है। इंडिविजुअल अच्छे हैं, टीम में सफल नहीं है, क्योंकि कॉपरेशन का पावर नहीं। आठवीं शक्ति पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति। जीवन है माना, परिस्थितियां तो आएंगी ही और हमें चैलेंजेस आएंगी, हमें उनको फेस करना होगा। अगर हमारे में ये फेस करने का पावर नहीं है तो हम टूट जाते, हिम्मत हार जाते, जिम्मेवारी छोड़ देते हैं, पलायन कर जाते हैं, मैं नहीं कर सकता, मैं ये जवाबदारी नहीं उठा सकता। जिसके अंदर पावर टू फेस होगा वो रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकेगा। क्यों लोग कहते हैं हम सहयोग देंगे पर हम जवाबदारी नहीं ले सकते? क्योंकि जवाबदारी लेते हैं तो बातों को फेस करना पड़ता है। अचानक परिस्थितियां थी, अब तो समय के उस दौर से हम गुजर रहे हैं कि अचानक कुछ भी हो सकता है। प्राकृतिक आपदाएं भी आ जाती है, मानव सर्जित आपदाएं भी आ जाती है, अचानक क्या हो जाता है कुछ कह ही नहीं सकते। कहते हैं भाई, सुबह घर से निकला इंसान शाम को वापस आएगा कि नहीं, सतत इंसान को चिंता और भय है, क्योंकि अचानक कुछ भी हो जाता है, नेचुरल कैलेमिटीज आती, किसी की डेथ हो जाती, अचानक बड़ी बड़ी बीमारियां, रोग लग जाते। अगर आत्मा में सामना करने की शक्ति नहीं है, स्वशक्ति नहीं है, स्वस्थिति मजबूत नहीं है, तो परिस्थिति हम पर हावी हो जाती है, व्यक्ति हिल जाता है। क्यों डिप्रेशन आजकल आ रहा है ज्यादा? क्योंकि स्वस्थिति शक्तिशाली नहीं है, इसलिए परिस्थिति हावी हो जाती। राजयोग से हमें स्वस्थिति मजबूत होती है। क्यों? योगी बनना माना, ऑलमाइटी परमात्मा को साथी बनाना। अब मैं अकेली नहीं हूं, योगी माना मैं दो हूं, मेरे साथ सर्वशक्तिमान परमात्मा है, तो भय नहीं रहेगा, चिंता नहीं रहेगी, हिम्मत रहेगी, क्योंकि स्वयं भगवान मेरा साथी। अब मैं अकेली नहीं हूं, ऑलमाइटी मेरे साथ है। तो स्वस्थिति शक्तिशाली बनने से परिस्थिति हमें साधारण लगती, पहाड़ राय हो जाएगा। जैसे कोई एक ऊंचे पहाड़ पर आप चले, या इस लेवल पर मुझे हर बात बड़ी बड़ी लगेगी, पर एक ऊंची पहाड़ी पर जाकर मैं यही देखूं तो छोटा छोटा लगेगा। जब एक कॉमन लेवल पर है तो हमें हर बात बड़ी, डिफिकल्ट, मुसीबत, भारी लगेगी, पर जब हम अपनी आत्मस्थिति ऊंची उठा लेते हैं, वही चीजें छोटी सामान्य लगती। पहले कोई गुस्सा करता था, कड़वा बोलता था, इंसल्ट करता था, घंटों तक दुखी होते रहते थे। जब आत्मस्थिति नॉलेजेबल, पावरफुल बनती है, तो अंडरस्टैंड कर पाते हैं, टॉलरेट कर पाते हैं कि चलो पता है, हर आत्मा का अपना नेचर, हर एक का अपना संस्कार है। वो गुस्सा कर सकता है तो मैं शांत भी तो रह सकती हूँ, मेरी वो पावर है। और हम जानते हैं इस वर्ल्ड ड्रामा की बहुत सुंदर विशेषता कि आज जो बात मेरे सामने आई है वो आज नहीं कल बदल जाएगी। कुछ भी यहां स्थाई नहीं, नथिंग इज परमानेंट इन दिस वर्ल्ड, ओनली चेंज इज परमानेंट। परिवर्तन संसार का नियम है। कितनी भी भारी दुखद बात आई है वो भी चली जाएगी, बदल जाएगी। जब परिस्थिति परिवर्तनशील है तो स्वस्थिति में क्यों अपसेट करूं? मैं स्व में स्थित रहूं, आज नहीं कल परिस्थिति बदल ही जाएगी। तो ये है अष्ट आत्मशक्तियां जो राजयोग से विकसित होती है। जब हम शिव से योग लगाते हैं तो हम शिव शक्ति बन जाते हैं। और ये अष्ट आध्यात्मिक शक्तियां जिससे हम बुराइयां खत्म कर सकते हैं, परिस्थितियां, समस्या, बातें खत्म, विघ्न खत्म कर सकते हैं। इसी की यादगार भक्ति मार्ग में देवियां शक्तियां अष्ट भुजाधारी दिखाई। कोई आठ भुजा वाली देवियां नहीं होती, ये उनकी अष्ट आत्मिक आंतरिक शक्तियां बताई। और अष्ट भुजा में अस्त्र शस्त्र धारी दिखाते हैं देवियों को कि उन्होंने असुरों का संहार किया। वास्तव में कोई स्थूल हिंसा करने की बात नहीं है, असुरों का संहार माना आसुरी संस्कारों को खत्म किया, बुराइयों को जीवन से खत्म किया। आज एक कलियुगी माता भी कितना भी खराब बच्चा हो वो उसको मार थोड़ी देती। तो ये जगत माताएं, शिव शक्तियां, देवियां, अंबा दुर्गा जगत माता कहते हैं, उनको असुरों का संहार करते बताया तो कोई हिंसा थोड़ी की। लेकिन वो आत्माएं शिव से योग लगाकर इतनी शक्तिशाली थी, बन गई कि खुद की तो बुराइयां खत्म की लेकिन औरों की भी बुराइयां खत्म की। तो हम आत्माओं को शिव शक्ति बनना, हमें ये अष्ट शक्तियां धारण करनी, तो हम ज्ञान गुण के शस्त्र धारण कर सकेंगे, बुराइयों को खत्म कर सके। क्रोध शांति से खत्म कर सके, प्रेम से खत्म कर सके, लोभ संतुष्टता से खत्म कर सके, ये गुणों के शस्त्र। तो आज आप सबको अपने अपने कर्म क्षेत्र में जाना है, तो ये अष्ट शक्तियां साथ लेकर जाना है, ताकि कर्म क्षेत्र में, जीवन में, वास्तविक संसार में कोई भी बातें आए, हम विचलित हुए बिगर स्वस्थ और संतुलित आत्मस्थिति से बातों को, परिस्थितियों को पार कर सके और अपनी ऊंचाई, महानता, श्रेष्ठता बना के रख सके। तो आप सबके लिए यही शुभकामनाएं हैं कि आप भी बाबा के ज्ञान गुण शक्ति के अलंकारों को साथ लेकर जाएं और विजयी बने, सफल बने। ओम शांति।